इसलिए फरमाया बराबर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और इस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो। जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सब के वारिस होने वाले। इसको हाईलाइट करें। अल्लाह ताला के प्यारे नामों में से एक नाम अल वारिस। लिखिए जरा, मेरी चीजों का वारिस कौन होगा? हम तो फौरन कहते ना बच्चे, हाय बच्चे नहीं, कौन वारिस होगा? बच्चों की चीजों का वारिस कौन होगा? उनके बच्चे, तो उनकी चीजों, उनके बच्चे, सब चीजें बिलाखिर अल्लाह को मिलनी है। तो जब आखिर में अल्लाह को मिल जानी है तो शुरू में उसको देने में क्या इतराज है? इसलिए कोई भी चीज अल्लाह के रास्ते में देते वक्त दिल छोटा ना करें, क्योंकि कल भी लेनी है उसने, आज दे दें। कई दफा मैंने खवातीन से सुना बाद में भी इन्होंने लेना है, जिंदगी में इनको दे दो। चलो हर बच्चे को एक एक चीज दे दो, बाद में ऐसे ही लेंगे तो क्या होगा? तो दुनिया में बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन जिस रब तक हमारी चीजें एंड पे पहुंचनी है, अगर हम उसको अपने दिल की खुशी से देंगे तो वो हमारे हक में सदका बनेगा। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे इनको भी हमने देख रखा है और बाद में आने वाले भी हमारी निगाह में, यानी अगले पिछले सब हमें दिखते हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सब को इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और आलिम भी है। इसके बाद अब इंसान को उसकी बेबसी सुनाई जाती है। इस जुमले पर जरा गौर कीजिएगा जो भी आप सुनने वाले हैं। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गहरे से पैदा किया। दोबारा बोलूं ये जुमला, हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गहरे से पैदा किया। फिर इंसान इतना अकड़े, ये नहीं कहा कि हमने इंसान को सोने से पैदा किया, चांदी से किया, हीरे की कली है, फूल की कली है, नहीं है, मट्टी के गहरे से पैदा हुआ। और अगर इंसान सोचिए मट्टी की बजाय सोने का बनता, चांदी का होता, कभी जमीन पे पांव रखता, कभी माथा टेकता मट्टी पे, कभी भी ना टेकता, तो हर इंसान अपनी असल को देखे। और इससे पहले जिन्नों को माँ की लपट से पैदा कर चुके थे, फिर याद करो इस मौके को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, फिर दोबारा वही जुमला, मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ, जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, इसे सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, इबलीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिससे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया। तीसरी बार ये जुमला। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से, क्यों कि तू मरदूत है, अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज तक मोहलत दे जबकि तू सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया इसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सब को बहकाऊंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। फरमाया, ये सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे इन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ इन बहके हुए लोगों पर ही चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे और इन सब के लिए जहन्नुम की वईद है। यहां देखिए आदम और इब्लीस का किस्सा, दो तीन बातें इसमें। पहली बात है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया वह नफख तो फीह में रूही, आयत नंबर 29 में आता है कि फिर मैंने उसमें अपनी रूह फूकी। ये क्या हकीकत है, तो इसको समझिएगा कि इंसान का जो जिस्मानी वजूद है ये मट्टी से बना, और मट्टी स्याह होती है, सी थ्रू नहीं होती ना, रोशनी उसमें नहीं जाती। तो आप कह लीजिए कि इंसान का जिस्म जुल्मानी है, अंधेरे वाला है, इसमें रूह कहाँ से आई? रहमान की तरफ से, और ये नौरानी है। इसी तरह जब हमारी रूह जिंदा होती है, और रूह जिंदा होती है कैसे, पिछली सूरत में पढ़ चुके हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जब हम अपनी रूह के तकाजे पूरे करते हैं, इसको कुरान की खुराक देते हैं, इसको अल्लाह से मोहब्बत सिखाते हैं, इसको नफ्स पे कंट्रोल सिखाते हैं, तो हमारा अंदर रोशन होता है, फिर हमारा डिप्रेशन खत्म होता है, हमारे दुख सारे गुजर जाते हैं। और मौत की सूरत में अल्लाह ने इसी रूह के मोती को ऊपर लेकर आना है। वही मिसाल याद रखें कि जब किसी से कोई गिफ्ट मिलता है तो रैपिंग पेपर सारे खोल के हम इधर ही छोड़ देते हैं और उसमें से निकला हुआ मोती या अंगूठी जो उसको उठा के पहन लेते हैं। मौत की सूरत में अल्लाह ने हमारी रूह का मोती चुन लेना है, और ये जिस्म का जो रैपिंग पेपर ब्राउन से या वाइट कलर जैसे भी लोगों के, ये सब ट्रैश कर दिए जाएंगे और उस ट्रैश कैन का नाम कब्र है। क्या इसी को सजाते और संवारते हम अपनी जिंदगियां गुजारेंगे और बाकी चीजों को छोड़ देंगे? फिर दूसरी बात पता चली कि अल्लाह ताला तो शैतान की भी सुनता है, तो अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को उसके गुनाहों के बावजूद उसकी मनपसंद चीजें दे दे तो फख्र ना करे कि अच्छा मैं अल्लाह की नजरों में अच्छा ही हूँ, तभी तो अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। फिर इसमें एक आखिरी चीज बड़ी प्यारी थी, अगर आपने नोट किया, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान का जोर किस पे नहीं चलता? मुखलसीन पे। इस बारे में आपको शैतान के गलबे की कम अज कम 3 आयतें मिलेंगी। आप देखिएगा कि जहां किसी न किसी नाते से शैतान के शर से बचने की बात सिखाई गई, तो क्या पता चला कि जब जितना इखलास पैदा करते जाएंगे उतना शैतान आपसे मुझसे दूर हो जाएगा। ये जहन्नम जिसकी वईद इबलीस के पैरोकारों के लिए की गई है, इसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उसमें से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया, यानी असाइन डोर्स हैं जहन्नम में। किसी में शराबी गुजरेंगे, किसी में पापी, किसी में जिनाकार, किसी में बदकार, हर एक को लगा। अगर उस दरवाजे से आता देख कर लोग समझ जाएंगे कि ये गुनाहगार लोग हैं और इनकी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर गई थी। अल्लाह ताला हमें सबको इससे बचा कर रखे। बखिलाफ इसके कि जो मुत्तकी लोग बाग़ों और चश्मों में होंगे और इनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ, बेखौफो खतर। इनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट खपट होगी हम इसे निकाल देंगे। दुआ कीजिए आज ही दिलों से खोट खपट निकाल दें। फिर एक मौका आ गया मुझे और आपको अपने दिल की सफाई करने का। घरों की सफाई करते ही रहते हैं ना, तो फिर गंदा हो जाता है कुछ दिन में। तो कुरान हमारे दिलों की सफाई चाहता है। निकाल के फेंक दे सब एनिमिटीज, ग्रजिस, गुस्से, नाराजगियां। आप फील करेंगे कि आपके शोल्डर्स हल्के हो गए, रिलैक्स फील करेंगे। और जितना आपको अल्लाह के ऊपर नजरें लगाना आएगा उतना लोगों से आपकी नजरें हटेंगी। तो जन्नत की खूबी क्या है कि दिलों में किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं होगा। आपस में भाई भाई बनकर आपस में तख्तों पर बैठेंगे। इन्हें वहां न किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा और न वो वहां से निकाले जाएंगे। नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम वन्नाजा बिहुल अजाबुल अलीम। ए नबी, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ, मगर मेरा अजाब भी नहायत दर्दनाक अजाब है। यह आयत आपको बार बार इस सूरत में दिखेगी। और आप देखिए एक्सट्रीम है, एक तरफ गफूर रहीम, अब इस पे बंदा जरा सा ढीला होने लगता है। खैर है, चूंकि वो गफूर रहीम है तो मुझे फिक्र की जरूरत ही, चूंकि वो तो साथ ही कह दी नाजाबी अबुल अलीम। इसलिए हदीस में आता है कि अल ईमान बैन अल खौफी वर रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के बीच का नाम है। अल्लाह ताला हमें बेखौफ होने से बचा दे और बिल्कुल ही खौफ में पड़कर अमल करने से भी दूर रखे। बैलेंस तरीके से अल्लाह से ताल्लुक रखेंगे तो इंशाल्लाह अमल करने को दिल चाहेगा। और इन्हें सरा इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा भी सुनाइए। जब वो आए उसके पास और कहा सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सियाने लड़के की बिशारत देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बिशारत देते हो? जरा सोचो तो सही, ये कैसी बिशारत तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बिशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना होना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग हुआ करते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा है अल्लाह के भेजे हुए वो मुहिम क्या है जिस पर आप हजरात तशरीफ लाए हैं? वो बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के घर वाले इसे एग्जेम्प्टेड यानी मुस्तस्ना हैं। इन सबको हम बचा लेंगे सिवाय इसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। फिर जब भेजे हुए हजरत लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हो? उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद इनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और इसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ाए। लूत ने कहा भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो यानी मुझे रुसवा ना करो, शर्मिंदा ना करो, और अल्लाह से डरो मुझे रुसवा ना करो। वो बोले क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? लूत ने आजिज आकर कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी मर्दों से ताल्लुक कायम करने की बजाय औरतों से हलाल तरीके से ताल्लुक रखो। बेटियां क्यों कहा? क्योंकि उम्मत की बेटियां नबी की बेटियों के मिसाल है। इशारा क्या था कि इस गंदगी को छोड़ो बल्कि तुम इनके साथ निकाह करो और जायज तरीके से इनके साथ रहो। अल्लाह ताला कहते लेकिन उनको क्या लगे? अब यहाँ नोट कीजिए, होमोसेक्सुअल जिस नशे में शिकार होते हैं ना उसको देखिए अल्लाह ने किस अंदाज में आयत 72 में कहा ला अमरू का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून, तेरी जान की कसम है नबी। बड़ा यूनिक अंदाज है, ऐसे बहुत कम अल्लाह ताला ने पुकारा कि नबी आपकी जान की कसम, इस वक्त उन पर एक नशा सा छाया हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे। गुनाहों का नशा होता है, याद रखिए, सर चढ़ के भूलता है। और इस तरह से ये कौम जो नफ्स परस्ती और शहवत परस्ती का शिकार हो चुकी थी, अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पो फटते ही, यानी सुबह होते ही, इनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने इस बस्ती को तलपट करके रख दिया और इन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक्य में बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो साहिबे फरासत हैं। और वो इलाका जहां ये वाकया पेश आया था गुजरगाहे आम पर वाकया है, इसमें सामान्य इबरत है इन लोगों के लिए जो साहिबे ईमान है। देखिए तीसरी दफा किस्सा आ गया वापस, और अभी बहुत दफा आएगा। शायद हर पारे में कहीं ना कहीं कौमे लूत का किस्सा मौजूद है। और आज अगर आपको जाने का इत्तफाक हो तो बहरे मुर्दार के पास से गुजरे, डेड सी जिसको कहते हैं, इसके जनूबी से यानी साउदर्न साइड पर ये कौम बसती थी, सिदूम नाम की ये कौम थी। एक जबरदस्त जलजला आया और ये पूरे का पूरा शहर जमीन में धंस गया और उसी के साथ वहां एक गंदे पानी का समंदर है। आज पास के इलाके हैं जो वो भी डूबे हुए। आप देखिए तो अल्लाह तआला ने कौम लूत को चार सजाएं दी थी। जहां जहां वाकया आ रहा है अगर आप सारी सजाओं को जमा करें तो उल्टाए गए, यानी जैसे बताया कि जिब्राइल ने पर डाला और इनकी बस्तियों को ऊपर से फेंका, फिर इनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर ये पत्थर गिरना था, सर से गुजरता और सुराख करता हुआ जिस्म से प्राइवेट पार्ट से गुजरता। यानी ये गंदी सोच दिमाग से शुरू होती है और इसका असर जहां तक जाता है वहां तक पत्थर जाते हैं। फिर तीसरी इन पर सजा थी कि आग के पत्थर इन पर बरसे थे और जलजला आया था। और चौथी सजा थी कि गर्क होते इन पर पानी छा गया, डूब भी गए। अब एक कौम जिसको अल्लाह ने इतनी चीजों में पकड़ा, आज भी वो समंदर जहां ये कौम डुबोई गई थी उसमें जिंदगी नहीं है, वहां मछलियां मर जाती हैं। नमक की इतनी कसरत है, जहां पानी डालते हैं वो उबल जाती है। अगर अंडा कहते हैं कि कच्चा अंडा वहां डाले, चंद मिनट में वो उबल के बाहर आते हैं, भाप निकल रही है वहां से। तो इस काम के करने वालों पे जो अल्लाह का गजब गुस्सा है, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे और आपको ऐसी गजब से बचा दे। जिस दिन अल्लाह का इरादा हो गया दुनिया को पकड़ने का, एक हंगामा होगा और वो सारी बस्तियां इलाके तबाह बर्बाद हो जाएंगे जिन्होंने इस सारे गंदे गैर फितरी अमल को हलाल जायज और फितरत के करीब कर दिया। और आज तो ये जुर्म कह दिया कि ये तो वो बंदे के जीन्स में होते हैं, ये तो अपने ख्वाहिशात में है। और आप देखिए कि मैं हैरान होती हूँ कि इस चीज को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। ऐसी एक वीडियो क्लिप कहीं देखा तो कुछ लोग आ जा रहे थे और अपना तारुफ करा रहे थे ना, कोई आया उसने कहा आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम दिस, जैसे प्रोफेशंस होते हैं। और एक उठ के बड़ी अदा से आई एम गे। अब देखिए लफ्ज गे का मतलब क्या है, खुद खुश रहने वाला, अच्छा लफ्ज है, लेकिन आज ये गाली बन गया। अब कोई किसी को क्या आई एम गे तो क्या जहन में आता है। तो जब उसने आई एम गे कहा तो सारे उसको बड़े ऐसे हसरत से देख रहे हैं, कैसा खूबसूरत इसको काम मिला। लेकिन याद रखिए इसके लिए दुआएं तो कर सकते हैं कि अल्लाह इस गंदगी और बेहयाई से हमारी नस्लों को बचाए। मैं और आप इस पे क्या मैयर लें। देखिए इस्लाम ने हमें बहुत ही खूबसूरत असूल सिखाया है कि जब तुम्हारे बच्चे बालिग होने के करीब हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो, 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल तक ना पढ़े या पढ़ने पे हो तो फिर उनको टेम करो, यानी उन पे सख्ती करो, और उनके बिस्तर अलग करो। यानी बेटी और बेटा नहीं, बेटा और बेटा भी अलग सुलाए। आजकल आप देखिए चूंकि डबल बेड्स और डबल मैट्रिसेस का रिवाज है, इट्स वेरी डेंजरस। ये वो उम्र होती है जिसमें वैसे ही अंदर चेंजेस हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हैं। तो आप माँ होने के नाते रातों को उठ उठ के बहाने से बच्चों के कमरे में चक्कर लगाएं, जब कभी आंख खुले जाके एक दफा देख ले। माओ को, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि माँ रात को आएगी, बिस्तर अलग करें, बिल्कुल उनके मेट्रेसेस अलग कर दें और उनको बिल्कुल बाहया कपड़ों में सुलाएं। बस दफा घरों में भी लोग इतने न्यूट कपड़े पहनते हैं तो उससे खुद बहुत इश्तहा होगी। तो हदीस में तो जो बातें वो तो इससे बहुत दूर की हैं, यानी अल्लाह भी उस दौर से भी बचा दे कि जब मुहर्रमात से जिना होंगे। लेकिन आज बेहयाई और इस तरह की चीजों से बचना है। फिर इसी तरह स्लीप ओवर्स की कभी इजाजत ना दें, दोस्त को कभी दोस्त के घर ना जाने दें, बेटी को बेटी की सहेली, रात की दोस्तियां कभी ना कायम रखें, दिन की दोस्तियां बहुत हैं, कजन्स हैं, शादी सगी बहन के घर कभी अपने बच्चों को न रहने दें। और नजरों की हिफाजत करें, देखें वो क्या देखते हैं, आंखों से कुरान यानी जो कंप्यूटर्स पे नेट पे, अगर आप लोगों के हस्बैंड कुछ कंप्यूटर्स जानते हैं तो शुरू से घरों में चेक्स लगाइए, ऐसे होते हैं। अगर आप में से किसी को हेल्प चाहिए हो तो सर आपकी हेल्प कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये बहुत प्रोफेशनली वो इसको करते हैं। आज तक अल्लाह तआला बचा के रखे हमारे कंप्यूटर में कोई इस तरह का ऐड, गंदी चीजें और जो भी ये खास दफा पेलटॉक के साथ आ जाते, नहीं आते। जो ही कोई नया फोन आता है, कोई कंप्यूटर आता है, ये सब उसको जाके अंदर से चीजों को बंद कर देते हैं। तो आप लोग इस तरह की चीजें करें, क्योंकि बच्चे आपसे ज्यादा समझदार हैं, उनको भी पता है। अगर आप उनसे कराएंगे तो उनको दूसरी तरफ भी आता है। और देखिए लोग अच्छे होते हैं, लेकिन शैतान उनको गलत चीजों में डालता है, तो क्यों मासूम जहनों को हम गंदा करें। और आपको मैं सच बताऊं, हिल के रह जाएंगे कि अब तो कार्टूनों में ये मैसेजेस हैं। कभी अपने बच्चों का अनअटेंडेडली कार्टून ना दिखाए, छोड़ दें। बहुत कुछ है, इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि जिसमें बच्चों को आज दीन सिखाया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है, उनकी सोच बढ़ाई जा रही है, उनको मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है। पॉजिटिव गेम्स दें, बंद करें, इनकी नजरें खत्म हो जाएंगी, यकीन करें। ये मैं अपनी उंगलियों को फील करती हूँ, चाहते ना चाहते सारा दिन काम ही फोन के साथ होता है, तो मैं अपनी उंगलियों को सुन्न होता फील करती हूँ। हालांकि कुछ भी नहीं होता, इतना यूज भी नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं फोन पे जब लिखती हूँ या कुछ करती हूँ तो मेरी उंगलियों में ऐसे नम नम फीलिंग होती है। तो मैं खुद सोचती हूँ कि जो बच्चे देखते सारा वक्त, इस पे पढ़ते, इस पे सुनते, इस पे कानों में म्यूजिक, हमें तो चले अल्लाह ने ऐसी चीजों से बचाया, तो कितनी जल्दी इन नेमतों से महरूम रह जाएंगे। और इन चीजों में से इतनी खराबियां, इतनी रेजिस सामने आती हैं, जला के रख देती हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजों पे प्रैक्टिकल मेजर लीजिए, और साथ साथ फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों में कभी भी ऐसी कोई चीज ना आए जो ऐसी चीजों में ले आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं साहिब फरासत इससे फायदा लेंगे, बाकी नहीं होंगे।